6 नवंबर दिन मंगलवार, आप सुन रहे हैं दिन भर, मैं हूँ सारिका सिंह। दिवाली मनाने आए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदला फैजाबाद जिले का नाम।
आज से इस जनपद का नाम भी हम अयोध्या के नाम से जनपद जाना जाए। एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ही नाम पर रखेंगे।
क्या बिहार बन रहा है सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला, खास रिपोर्ट में पड़ताल।
अगर आप हमें मारेंगे तो प्रतिक्रिया में हम भी आपको मारेंगे। गांधी जी तो नहीं है, आप हमको मारेंगे दूसरा गाल धरा देंगे। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथे विचो।
और अमेरिका में वोटरों की कसौटी पर ट्रंप का करिश्मा।
When you enter the voting booth on Tuesday, you will be making a simple choice.
बात कर्नाटक चुनाव की भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कमलेश मठेनी से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के एक और जिले का नाम बदल दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या होगा। अमेरिका में बेहद अहम मध्य अवधि चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। इस बार इन चुनावों के लिए चले प्रचार अभियान को पिछले कुछ दशकों का सबसे विभाजक अभियान बताया जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन चुनावों को अपने लिए जनमत संग्रह करार दिया है। हालांकि डेमोक्रेट्स ने उम्मीद जताई है कि इन चुनावों में उन्हें ट्रंप की नीतियों की नाराजगी का फायदा मिलेगा। फ्रांसीसी मीडिया में खबर आई है कि सुरक्षा एजेंसियों ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर हमले की साजिश रचने के संदेह में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। न्यायिक सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इस साजिश का संबंध अति दक्षिणपंथियों से है। शुरुआती जांच में इसके पीछे चरमपंथी साजिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इराक में 200 से ज्यादा सामूहिक कब्रें मिली हैं। ये कब्रें उन इलाकों में मिली हैं जहां पर एक समय चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट समूह का नियंत्रण था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि ये कब्रें मूसल से लेकर खसफा तक फैली हुई हैं। जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की उपप्रवक्ता रवीना शामदसानी ने बीबीसी को बताया कि ये कब्रें शायद उन लोगों की हैं जिन्होंने इस्लामिक चरमपंथियों का विरोध किया था। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता कि इन सामूहिक कब्रों में कौन है, लेकिन इतना पता है कि ISIL ने धार्मिक और नस्लीय अल्पसंख्यकों जैसे कि यजीदियों को निशाना बनाया है। हमें लगता है कि खुदाई पूरी होने के बाद और भी महिलाओं, बच्चों और पुरुषों का पता चल सकता है। हो सकता है कि इनमें महिला राजनेता, डॉक्टर और वकील हों। हो सकता है कि वे लोग भी मारे गए हों जिन्होंने ISIL के शासन का विरोध किया हो। ये थे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की उपप्रवक्ता रवीना शामदसानी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चीन ने अपने पश्चिमी प्रांत शिनजियांग में अपनी नीतियों का बचाव किया है। एक अमरीकी थिंक टैंक ने कहा था कि सरकार ने यहां पर अपनी सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं पर होने वाला खर्च 3 गुना बढ़ा दिया है। चीन पर यहां पर लाखों वीगर मुसलमानों को हिरासत में रखने का आरोप है। जेम्सटाउन फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि जिन संगठनों ने हिरासत में रखने के लिए कैंप बनाए हैं उन्होंने चीन के लेबर री एजुकेशन सिस्टम को नज़रअंदाज किया था। बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने इस रिपोर्ट पर शक जताया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि इसमें ये आंकड़े कहाँ से लिए गए हैं। मुझे स्पष्ट नहीं है कि शिनजियांग की सरकार सुरक्षा पर कितना खर्च करती है। जिस थिंक टैंक का जिक्र हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपनी रिपोर्ट में शिनजियांग की सरकार द्वारा लोगों के जीवन स्तर के उत्थान के लिए किए जा रहे खर्च को भी इस रिपोर्ट में शामिल कर लिया है। ये थे चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग के शब्द। यूरोपीय संघ ने वेनेजुएला पर लगाए गए प्रतिबंधों को एक और साल के लिए बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। वेनेजुएला को हथियार बेचने पर प्रतिबंध लगा रहेगा और ऐसे सुरक्षा उपकरणों की खरीद पर भी रोक लगी रहेगी जिन्हें राजनीतिक विरोधियों को दबाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। वेनेजुएला की सरकार के 18 वरिष्ठ सदस्यों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा रहेगा और उनकी संपत्तियाँ फ्रीज रहेंगी। यूरोपीय परिषद ने कहा कि वेनेजुएला में लगातार खराब हो रहे हालात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर की तमाम खबरें लेकर हाजिर हूं मैं, सारिका सिंह।
और मैं आप सबको इस बात के लिए कहना चाहता हूँ कि आज से इस जनपद का नाम भी अयोध्या के नाम से जनपद जाना जाए। यहाँ पर एक नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है और मैं चाहूंगा कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम भी यहाँ पर बने तो वह यहाँ की परंपरा के साथ राजर्षि दशरथ के नाम पर इस मेडिकल कॉलेज का नाम हो जाए। और यहाँ पर हम एयरपोर्ट का भी निर्माण कार्य कर रहे हैं। एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ही नाम पर रखेंगे।
ये है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। वो लगातार दूसरे साल अयोध्या में दिवाली मनाने पहुंचे हैं और जैसा आपने सुना, योगी आदित्यनाथ ने एक और जिले का नाम बदल दिया है। अब से कुछ वक्त पहले उन्होंने ये घोषणा की, अब फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या होगा। प्रदेश सरकार की पहल पर सरयू तट पर करीब 3 लाख दिए जलाए गए हैं। सरकार एक नया रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश में है। योगी आदित्यनाथ ने कई घोषणाएं की। हमारे साथ ही समीरात्मज मिश्र अयोध्या से फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर हम उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि अयोध्या के लोगों ने पूरे आयोजन को लेकर क्या कहा।
कल्पवास करते हैं एक महीना, स्नान करने के लिए जा रहे थे, हमको रोक दिया गया, हम नहीं जा पा रहे हैं, सारा मार्ग बंद कर दिए हैं। एक गलत बात है, इस मार्ग से डेली आते जाते हैं हम लोग, अब उस मार्ग से जाने नहीं दिया जा रहा है। जिस घाट पर डेली हम लोग नहाते हैं, फिर घाट पर नहाते हैं न, थोड़ो है आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ नरसों वहाँ, ये सब अच्छी बात थोड़ो है भाई।
ये भाई हम लोग को जाने देना चाहिए ना, कि आप थोड़ा सा रास्ता दे दें कि हम लोग चले जाएं, नहा लें, अपना नियम पूरा कर लें। जो योगी आ रहे हैं ना, आज शायद आए, आप ही गए हैं, इसीलिए बंद किए हैं,
रास्ता बंद किए हैं, नहीं आने दे रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। 14 दिन हो गया नहाते, अभी हमको एक महीना नहाना है, आवाज नागा हो गया।
जो प्रोग्राम हो रहा है, भीड़ बाहर से आ रही है, कुछ जो एक विशेष लोग हैं, बाकी आम जनमानस से दूर जा रहा है। जैसे कि आज के दिन हमारे धर्मशाला में काफ़ी अच्छी भीड़ होती थी, लोग आते थे, दीपावली मनाने आए हैं, लेकिन आज वो क्रेज़ नहीं है, आधे ज़्यादा कमरे हमारे आज खाली हैं, क्योंकि लोगों के मन में ये है कि अयोध्या में हो रहा है, आगे क्या हो जाए, ऐसा मन में है लोगों के कि ये ऐसा करते रहे हैं तो ऐसा ना वहाँ अयोध्या में कुछ हो जाए, कुछ राम के नाम पर कुछ ऐसा मचा दें।
ये आयोजन कोरिया से आई एक खास मेहमान की वजह से चर्चा में है। उन्हें लेकर अयोध्या के लोगों में कितनी उत्सुकता रही, ये भी सुनिए।
महारानी आ रही, सुन रहे हैं, कोरिया की महारानी आ रही, वो हमारे यहाँ की थी, वहाँ चली गई है, सब मालूम पड़ा था।
आपके यहाँ की थी?
हाँ, जो हमारे अयोध्या की थी।
अच्छा, हमें नहीं मालूम कैसे।
हम लोग सुनते हैं ऐसे ही कि अयोध्या की थी, वो चली गई थी पानी के उससे,
नाव
से, और यहाँ मतलब उनका तो यहाँ पार्क वर्क बना है, कभी कभी पता चलता की आएंगी।
क्या नाम है उनका?
उनका नाम तो अजीब है, पता नहीं क्या, जुग जुग, हाँ जुग कुछ करे, कुछ ऐसा है।
अच्छा, इनको आपको मालूम है?
यही जुग नाम था उनका।
जी। नहीं, जो आ रही हैं उनका
वो,
क्या नाम?
उनके बच्चे होंगे, वो रानी तो बहुत पुरानी थी ना, वो उनके जो आ रही हैं उनकी लड़की या बहू होंगी।
नहीं, नाम मालूम नहीं, लेकिन जंग वो बैनर पर लिखा है जुग।
ये आवाजें अयोध्या के लोगों की थी। और अब सीधे बात समीरात्मज मिश्र से, जो अयोध्या में मौजूद है। समीर जी, 2019 में आम चुनाव के पहले ये आखिरी दिवाली है, अयोध्या एजेंडा में पहले आ चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लोग क्या सिर्फ जिले का नाम बदलने की उम्मीद लगाए थे या फिर इंतजार किसी और घोषणा का भी था?
बिल्कुल, आपने सही कहा कि हालांकि नाम बदलने की उम्मीद तो लगाए थे, क्योंकि योगी की लगातार उन्होंने कई शहरों का नाम बदला, कई जगहों का नाम बदला। आज ही आपको पता होगा कि एक और यहाँ पे उन्होंने फैजाबाद का नाम बदल करके श्री अयोध्या रखा है, तो लखनऊ में जो स्टेडियम बन करके तैयार, जहां मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज और भारत का, उसका भी नाम उन्होंने बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा है। हालांकि जो आपने कहा कि उम्मीद कुछ और लगाए थे, यहां बड़ी चर्चा थी इस बात की, और उसकी उसके बारे में योगी जी पिछली दिवाली पर भी चर्चा कर चुके थे कि यहाँ पर श्री राम, भगवान राम की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगाएंगे, और ये चर्चा थी इस बार कि 150 मीटर से ज्यादा ऊंची मूर्ति की शायद वो इस मौके पर घोषणा कर दें, लेकिन ये घोषणा उन्होंने नहीं की। इससे कुछ लोगों को मायूसी भी हुई, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं अयोध्या में जितने लोगों से पिछले 2-3 दिन से यहाँ बातचीत कर रहा हूँ, उनमें किसी की भी ये इच्छा नहीं है कि यहाँ पर वो ये योगी जी से भगवान राम की मूर्ति की अपेक्षा करते हैं या कोई और अपेक्षा उन लोगों की, इनसे जो अपेक्षा है वो मंदिर बनाने की है। तो मंदिर बनाने की घोषणा तो योगी जी कर नहीं सकते थे, लेकिन मूर्ति की घोषणा को लेकर के चर्चाएं काफी थी कि शायद इसकी घोषणा यहाँ पे की जाए।
अयोध्या में चमक दमक रौनक खूब दिखी आज। योगी आदित्यनाथ को उनकी घोषणाओं पर तालियां भी खूब मिली, लेकिन आपने जो लोगों की स्थानीय लोगों की आवाज भेजी उससे तो लगता है कि हर कोई खुश नहीं है।
बिल्कुल आप सही कह रही हैं और मैं इस समय घाट पर हूँ। यहाँ पे चारों ओर रोशनी आप मैं देख सकता हूँ, आप नहीं देख सकती, श्रोता हमारे नहीं देख सकते, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इससे हर तरफ रोशनी है। कुछ देर पहले यहाँ 15-20 मिनट लगातार आतिशबाजी भी हुई है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि थोड़ा पीछे अगर हम 100 मीटर भी पीछे चले जाए पूरे घाट के पीछे, तो वहां के लोगों को यहाँ घंटों संघर्ष करना पड़ा कि वो इस मौके को कैसे देख सकते हैं। यानी अयोध्या के लोगों को वो जो एक दृश्य था उसको यहाँ पे संघर्ष करना पड़ा है, और उनको मार करके और पुलिस वालों ने फिर खदेड़ करके भगाया। यानी बहुत से लोग ऐसे थे जो आना चाहते थे लेकिन नहीं आए, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझ करके घरों से नहीं निकले कि उनको जब देखने को ही नहीं मिलेगा तो आकर के यहाँ करेंगे क्या।
जी शुक्रिया समीर आत्मज मिश्र अयोध्या से अपडेट देने के लिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या नाम बदलने से काम बनेगा। चुनाव के वक्त हिंदुत्व को लेकर कई प्रयोग किए जा रहे हैं। बिहार में भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है, जहां रामनवमी के दौरान कई जिलों में एक साथ सांप्रदायिक हिंसा फैली थी। ये कई मायनों में अलग था क्योंकि हर जगह पैटर्न एक जैसा था, डीजे पर भड़काऊ गाने बजाते लोग, संवेदनशील इलाकों से गुजरता जुलूस और बड़ी संख्या में तलवारों का प्रदर्शन। उस घटना के 7 महीने बाद और सरकारी दावों के बावजूद दशहरा में भी कई इलाकों में सांप्रदायिक तनाव रहा। सीतामढ़ी में एक मुस्लिम बुजुर्ग को पीट पीट कर मार डाला गया। राज्य में हिंदू संगठन एकाएक खूब सक्रिय हो गए। क्या बिहार में सांप्रदायिकता से सियासी फसल काटने की तैयारी है? सुनिए बीबीसी संवाददाता पंकज प्रदर्शी की ये विशेष रिपोर्ट।
बिहार में रामनवमी के समय कई जिलों में सांप्रदायिक हिंसा का दौर चला। अब उस घटना को 7 महीने हो गए हैं। राज्य सरकार दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन सरकार के दावे की पोल उस समय खुल गई जब इस साल दशहरा के दौरान सीतामढ़ी में हिंसा हुई। 80 साल के एक बुजुर्ग मुसलमान को पीट पीट कर मार दिया गया। यही नहीं, हत्या के बाद शव को जलाने की भी कोशिश की गई। सुनिए सीतामढ़ी के SP विकास बर्मन क्या कहते हैं।
कुछ सामाजिक तत्वों के द्वारा इस घटना को छुपाने के लिए या जो भी हो, उसमें उनको घटना के बाद मृत्यु के बाद उनपे लकड़ी वकड़ी डाल के उनको इस तरह का प्रयास किया गया। आज जली लाश को बरामद किया गया, पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने भेजा और FIR दर्ज करके कुल हम लोगों ने 38 लोगों की गिरफ्तारी की है।
विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बयान आता है कि सरकार कानून बनाकर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराए। फिर क्या था, अक्सर विवादों में रहने वाले चर्चित केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक के बाद एक बयान देना शुरू कर दिया।
कांग्रेस ने सोच लिया है कि इसे विवाद बना करके हिंदू मुस्लिम बनाए। मुझे भय है कि अगर हिंदुओं का सब्र टूटा तो क्या होगा, ये कोई नहीं कह सकता।
हिंसा के दौर में बिहार के हर जिले में एक ही पैटर्न देखने को मिला। गौर करने की बात ये भी है कि इन सभी इलाकों में BJP, विहिप और बजरंग दल से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगे। नवादा में विहिप और बजरंग दल के नेताओं पर जब उकसाने का आरोप लगा और उनकी गिरफ्तारी हुई तो गिरिराज सिंह उनसे मिलने जेल तक चले गए, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ। लेकिन अब जेल से छूट गए इन नेताओं को इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगती।
गिरिराज सिंह चूंकि उनका हिंदुत्व का मुद्दा है और ऐसे मुद्दों को उठाते रहते हैं, और हम लोगों का भी स्नेह उनको मिलता है और उनका भी स्नेह हम लोग को मिलता है। जब शहाबुद्दीन जेल में बंद थे तो लालू जी के मंत्री मिलने के लिए गए थे तो उन पर तो कोई कमेंट नहीं हुआ।
भागलपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के लड़के अर्जित शाश्वत चौबे पर आरोप है कि उन्होंने उस जुलूस का नेतृत्व किया था जिसके संवेदनशील इलाकों में जाने के बाद हिंसा भड़की। अर्जित शाश्वत तो जेल भी गए, लेकिन वे भी अपनी और अपनी पार्टी की किसी भी भूमिका से इनकार करते हैं।
हमारे पार्टी, हमारे दल ने कभी भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किसी ने भी नहीं किया है, न करेगा।
भागलपुर के सामाजिक कार्यकर्ता उदय ने 1989 के दंगों के दौरान भी प्रभावित इलाकों में काम किया था और इस बार भी उन्होंने उन इलाकों में जाकर लोगों के बीच काम किया है। वे कहते हैं,
ये पैटर्न देखने में आया कि हर जगह एक जैसा था, उसी तरह से एक जैसा वो तलवार लेकर के दौड़ रहा है, एक तरह से जो है जो बजरंगबली का झंडा जो लाल झंडा होता था उसको भगवा कर देना, तो एक जगह कैसे हो गया? इसका मतलब कि पूरी प्लानिंग थी, तभी तो पूरे बिहार में वो उसी तरह का पैटर्न था।
बिहार में रामनवमी के समय हुई हिंसा के बाद एक स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। कुछ रिपोर्ट्स में इसका जिक्र था कि तलवारों की ऑनलाइन खरीद की गई। हालांकि बिहार के गृह सचिव आमिर सुभानी इससे इनकार करते हैं। उनका कहना है कि सबक सीखते हुए दशहरा के समय ज्यादा सावधानी बरती गई।
ऑनलाइन खरीद होने की कोई हमें जानकारी नहीं है, और जो अभी कुछ मिलता भी है तो वो ऑनलाइन से नहीं मिलता है, ऑनलाइन वाली कोई विशेष बात नहीं। लेकिन हम लोगों ने जो जुलूस निकालने वाले आयोजक होते हैं, जो लाइसेंस लेते हैं, तो लाइसेंस में हम ये शर्त लगा देते हैं कि उसमें गलत किस्म का संगीत नहीं बजाया जाएगा, और इसी शर्त पर वो प्रोसेशन निकालने की अनुमति देते हैं।
इन सब के बीच बिहार में हिंदू संगठन काफी सक्रिय हो गए हैं। हिंदुओं को अपमानित करने वाले उनके तर्क हर जगह सुनाई देते हैं। कई नेता तो यहाँ तक कहते हैं कि हमें कोई मारेगा तो हम भी मारेंगे। जरा रोसड़ा में आरएसएस के जिला मंत्री अर्धेंदु श्री बब्बन की इन बातों पर गौर कीजिए।
जो अगर आप हमें मारेंगे तो प्रतिक्रिया में हम भी आपको मारेंगे,
मतलब वो
तो हम गांधी जी तो नहीं है, आप हमको मारेंगे दूसरा गाल धरा देंगे।
मतलब गुजरात में जो हुआ था वो सही,
वो एकदम बिल्कुल सही हुआ। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथे विचो।
आप गुजरात को भी सपोर्ट कर रहे हैं?
कहां गुजरात को हम सपोर्ट जो कर रहे हैं, वहां क्या हमने क्या कहा? अहिंसा परमो धर्म, मेरा अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे बड़ा धर्म है।
औरंगाबाद में लोगों को उकसाने के आरोप में जेल जा चुके बीजेपी नेता अनिल सिंह अब जेल से बाहर हैं, लेकिन उनके तेवर में कोई कमी नहीं है।
जो हिंदू को माने, जो हिंद के अस्तित्व को माने, वही हिंदू है।
वंदे मातरम भी कहे,
वंदे मातरम तो कहना चाहिए, भारत में रहना चाहिए, वंदे मातरम कहना चाहिए।
लेकिन जो लोग नहीं कहेंगे, वो
जो लोग नहीं कहेंगे वो अपने पापों के स्वयं भागीदार होंगे, स्वयं भुक्त भोगी होंगे। जामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली से जो पढ़ के आया ना, उन बच्चों ने बड़ा गड़बड़ी फैलाया है यहाँ पे।
क्या भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा और 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को एक प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल कर रही है? जानकार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शमशान और कब्रिस्तान का सवाल उठाकर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की थी, और इसमें काफी हद तक सफल भी रहे। पटना में समाचार एजेंसी पीटीआई के ब्यूरो चीफ नचिकेता नारायण कहते हैं,
2019 का चुनाव तो बेशक वह इनके मन मस्तिष्क में भाजपा नेतृत्व के तो है ही, लेकिन उसमें मेरे ख्याल में एक दीर्घकालीन एजेंडा भी है। देखिए, हिंदी पट्टी में शायद बिहार एकमात्र राज्य रह गया है जहां आज तक भाजपा अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। बिहार आखिरी पड़ाव है इनके लिए, आखिरी खिला है जिसको उनको अकेले फतह करना बाकी है।
एक और बात जो विहिप आरएसएस बजरंग दल और बीजेपी नेताओं में कॉमन है, वो है हिंदुत्व की परिभाषा, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और देश के मुसलमानों को नसीहत। भागलपुर से बीजेपी नेता अरिजीत चौबे कहते हैं कि हिंदुत्व जीवन जीने का तरीका है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
मैं ये मानता हूँ कि देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। वंदे मातरम, माँ जिसको भारत माता हम बोल रहे हैं, उसकी वंदना करना कौन मुसलमान बोलता है कि ये गलत बात है?
आशंका और भय आम आदमी में भी है। लोगों को लगता है कि बिहार के सियासी घमासान में कहीं आने वाले दिनों में सांप्रदायिक दरार और चौड़ी ना हो जाए। नवादा में अपने घर पर हमें मिले फखरुद्दीन अली अहमद, उनका कहना है कि 2014 के बाद से ही माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है।
2014 के बाद जो है इस ढंग का उस डीजे के माध्यम से है ना, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे भाई, पाकिस्तान मुर्दाबाद तो हम तो हिंदुस्तान में है। आप मुस्लिम समाज का जो मोहल्ला से गुजर रहे हैं तो पाकिस्तान मुर्दाबाद, फला टोपी वाले सर झुका के चलना होगा, जय श्री राम कहना होगा, इस तरह की जो है बातें जो है ये बेबुनियाद बातें हैं।
नीतीश कुमार ने वर्ष 2017 में राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू पहले भी भाजपा के साथ सरकार में रह चुकी है। क्या नीतीश कुमार और बीजेपी सांप्रदायिकता के मुद्दे पर आमने सामने हैं? नीतीश कुमार क्यों कभी कभी इन संवेदनशील मुद्दों पर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं? पटना में पीटीआई के ब्यूरो चीफ नचिकेता नारायण।
जब नीतीश कुमार अलग हुए और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आक्रामक नेतृत्व भाजपा में उभरा, तो उसके बाद से यह बात सामने आ रही थी कि भाजपा अब अपने दम पर अपना फैलाव करने की कोशिश करेगी। और हम लोगों ने 2014 के लोकसभा में चुनाव में देखा भी कि भाजपा अपने दम पर भी एक अच्छा खासा प्रदर्शन करने में सफल रही, लेकिन विधानसभा चुनावों में असफलता प्राप्त करने जाने के बाद भाजपा में रणनीति पर पुनर्विचार हुआ, उसी के कारण जब नीतीश अलग हुए महागठबंधन से तो भाजपा ने दोबारा उनके साथ उनको न सिर्फ समर्थन दिया, सरकार में शामिल हो गए। लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि भाजपा अब उनकी छत्र छाया में ही रहने से में संतोष नहीं करेगी, वो अपना जो जिसको हम लोग हिंदुत्व एजेंडा कहते हैं उसको बढ़ाने की चेष्टा करेगी।
लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू को लगता है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते ऐसा कोई एजेंडा सफल नहीं हो पाएगा।
भारतीय जनता पार्टी के साथ 17 वर्ष हम पहले भी साथ में रहे, पिछले 1.5 वर्षों से साथ में रहे, एक नॉर्मल प्रयोगशाला तो बन नहीं पाया किसी का, तो यहाँ पे सांप्रदायिक प्रयोगशाला बनेगा। नीतीश कुमार के रहते ये सब चीज हवा हवाई है।
गौर करने वाली बात ये है कि हर जगह हिंदू संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस और प्रशासन से नाराजगी है। कुछ नेता तो नीतीश कुमार से भी खफा है।
नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम पर धब्बा है। उन्होंने विकास का नारा दिया, सुशासन का नारा दिया, लेकिन इनके सुशासन में अपराध का बोलबाला बढ़ा है, हत्याएं बढ़ी है। पूरे बिहार में हिंदू संगठन नीतीश कुमार टारगेट में है।
नीतीश कुमार की दुविधा के बीच भारतीय जनता पार्टी भी खुलकर इन स्थितियों का विरोध करती नहीं दिखती। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष नित्यानंद राय बीजेपी पर लगे सभी आरोपों से इनकार करते हैं।
हिंसा में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं का हाथ नहीं है। न्यायालय में मामला है तो हाँ, न्यायालय में जाकर सब दूध का दूध पानी का पानी होगा।
दरअसल तनाव में सांप्रदायिक राजनीति ज्यादा फलती फूलती है, मतदान में भी इसका फायदा होता है। बिहार में कुछ कुछ महीनों के अंतराल पर होती सांप्रदायिक हिंसा और पर्व त्योहार के मौके पर बढ़ते तनाव चिंता का विषय है। अभी चुनावी त्योहार आना बाकी है और आशंका यही है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में उन्माद भड़काने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि सांप्रदायिकता की आग से सियासी कड़ाही गर्म होती है। पंकज प्रियदर्शी, BBC।
अब खबर कर्नाटक चुनाव की, जहां 3 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए। इसमें कांग्रेस जेडीएस गठबंधन ने 5 में से 4 सीटें जीत ली। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस जीत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिवाली का जश्न मनाने का मौका दे दिया और बीजेपी को कड़ा संदेश दिया। बीबीसी संवाददाता इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
हर किसी को यह स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण कर्नाटका के इलाके में मंड्या लोकसभा क्षेत्र और रामनगरम असेंबली क्षेत्र में जेडीएस को जीत आराम से हासिल हो जाएगी। कारण इतना ही था कि इन क्षेत्रों में सिर्फ कांग्रेस और जेडीएस ही जीतते आए हैं और बीजेपी को उतना समर्थन नहीं मिला है। लेकिन जिस तरह कांग्रेस ने बल्लारी लोकसभा क्षेत्र और जमखंडी विधानसभा क्षेत्र जीता है, उससे उन्हीं के पार्टी कार्यकर्ता हैरान हो गए हैं। बल्लारी जो रेड्डी भाइयों का गढ़ माना जाता था, वहां कांग्रेस ने करीब 2.5 लाख वोटों से जीत हासिल की है और जमखंडी में जहां ज्यादातर लिंगायत समुदाय के मतदाता हैं, वहां भी जीत का मार्जिन काफी बड़ा है। तो इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? हमने यह सवाल वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और जैन विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर संदीप शास्त्री से पूछा। उन्होंने कहा,
नेशनल लेवल का मैसेज भी है, वो नेशनल मैसेज ये है कि लोकल लेवल पे अगर आप ये एंटी बीजेपी पार्टीज जो हैं, अगर लोकल लेवल पे वो साथ आएंगे तो एक बीजेपी को सीधा टक्कर देने में वो सक्सेसफुल रहेंगे। अगर वो अलायंस नहीं बनेगा, सीधा टक्कर नहीं दे पाएंगे और उसका एडवांटेज बीजेपी ले जाएगी।
लेकिन जितना कांग्रेस और जेडीएस में खुशी का माहौल है, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं में बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। बीजेपी के ही पूर्व कानून मंत्री सुरेश कुमार ने उपचुनाव के परिणाम आते ही एक ट्वीट के जरिए कहा कि वास्तविक आत्मनिरीक्षण का समय आ गया है। सुरेश कुमार ने किसी से बात नहीं की, लेकिन कर्नाटका बीजेपी के पूर्व MLC भानु प्रकाश ने BBC को कहा, किसी भी संदर्भ में आत्मनिरीक्षण करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो हम कहेंगे वही सीधा रास्ता है और जो दूसरे कहते हैं वो सीधा रास्ता नहीं है। जहां तक नेतृत्व का सवाल है, वो केंद्र नेतृत्व की सोचने की बात है। ये थे भानु प्रकाश के शब्द। भानु प्रकाश का सीधा इशारा राज्य के बीजेपी अध्यक्ष BS येडियुरप्पा पर है। बीजेपी में आम बात है कि येडियुरप्पा के विरोध में काफी गुटबाजी चलती है। पार्टी के कार्यकर्ता अपना नाम नहीं बताने के शर्त पर कहा कि गुटबाजी की ही वजह से जमखंडी की सीट बीजेपी ने हारी है। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार आनंद न्यामेगौड़ा को उनके पिता के देहांत से सहानुभूति वोट भी मिले। कांग्रेस के नेता मानते हैं कि गठबंधन की जीत का कारण एक और विषय भी है कि गठबंधन के हर नेता ने मिलजुल कर काम किया और केंद्र की बीजेपी सरकार की हर मोर्चे पर नाकामी भी उनकी जीत का कारण है। आज के नतीजे बीजेपी विरोधी पक्षों को तो खुश करेंगे ही, लेकिन गठबंधन से जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को सालों से आई हुई प्रतिद्वंद्विता को झेलना एक चुनौती रहेगी ही। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5,875, 9,510 और 11,995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
बात एक और चुनाव की। माना जा रहा है कि इसका संदेश जाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। उनकी राजनीति के लिए आज का दिन खास है। वहां पर मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अमेरिकी मतदाताओं के सामने डोनाल्ड ट्रंप की परीक्षा हो रही है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की।
When you enter the voting booth on Tuesday, you will be making a simple choice. A vote for Republicans is a vote to continue.
मंगलवार को जब आप मतदान केंद्र जाएंगे, आपके पास बिल्कुल आसान सा विकल्प होगा। आप अगर रिपब्लिकन को वोट देंगे तो इससे अमेरिका को समृद्ध करने का काम जारी रहेगा, पर आप डेमोक्रेट को वोट देंगे तो ये आर्थिक तरक्की रुक जाएगी। डेमोक्रेट का एजेंडा हमारे देश के लिए बुरे सपने जैसा है, पर रिपब्लिकन का एजेंडा अमेरिकन ड्रीम को पूरे करने के जैसा है। हम वो कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। अब मतदान के बाद फैसला आएगा तो पता चलेगा कि किसे जीत मिली, मगर नतीजों का सीधा असर राष्ट्रपति ट्रंप के कामकाज पर पड़ेगा और इससे उनके राजनीतिक भविष्य की दिशा तय हो सकती है। इस बारे में मैंने बात की अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मुक्तदर खान से।
इस मिड टर्म इलेक्शंस को जिस तरह से डेमोक्रेट्स जो अपोजिशन पार्टी है, जिस तरह से उन्होंने इसको लड़ा है, उन्होंने इसको ट्रंप की पॉलिसीज पर एक रेफरेंडम बना दिया है और वो खुद भी अपने बयान से, अपनी तकरीर से इकरार कर चुके हैं कि ये उनकी पॉलिसीज पर रेफरेंडम है। अगर ये साबित हो जाता कि मुल्क में ज़्यादातर लोग इनकी पॉलिसीज के खिलाफ है, इसके बावजूद कि इकॉनमी इतनी अच्छी और मजबूत है इस वक्त, तो एक किस्म से असर हो सकता है ट्रंप की इलेक्शन पर 2020 में। दूसरी चीज़ ये है कि फिलवाल रिपब्लिकन पार्टी गवर्नमेंट का हर हिस्सा पर कंट्रोल करती है, इस वजह से ट्रंप के कई प्रॉब्लमेटिक पॉलिसीज को वो सपोर्ट मिल रही है, खासतौर से उनके टैक्स कट्स के मिसाल के तौर पर। अगर वो हार जाते हैं मिड टर्म इलेक्शन, अगर दोनों हाउसेस यानी कांग्रेस का हाउस और सेनेट अगर डेमोक्रेट्स के हाथ में आ जाता है, तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बहुत ही मुश्किल साबित हो और वो उनको इम्पीचमेंट प्रोसीजर शुरू कर दे। तो जो कमिटीज होते हैं इंटेलिजेंस की, ओवरसाइट की कमिटीज, वो डेमोक्रेट्स के हाथ में आ जाएंगे और मुसलसिल ट्रंप के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस वगैरह हो सकते हैं। और खासतौर से ये जो रशिया का इंटरफेरेंस रहा है अमेरिका की इलेक्शन में, उसके इन्वेस्टिगेशन में ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल साबित होगा अगर डेमोक्रेट्स सिर्फ हाउस ही जीत जाते हैं।
अमेरिका से जानकारी दे रहे थे मुक्तदर खान। और अब स्पोर्ट्स न्यूज। आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच मैच खेला जा रहा है। मैच का हाल बता रही हैं ज्योतिका सिंह।
जी हाँ, आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज के कप्तान कार्लोस ब्रॉथ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और 11 ओवर हो चुके हैं और 94 रन भी हो चुके हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पे, और रोहित शर्मा धवन एकदम बरकरार खेल रहे हैं।
शुक्रिया ज्योतिका। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया है। कर्नाटक में 3 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस जनता दल सेक्युलर गठबंधन को बड़ी कामयाबी मिली है। इस गठबंधन ने लोकसभा की 3 में से 2 और विधानसभा की दोनों सीटें जीत ली हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट ही जीत सकी है। अमेरिका में बेहद अहम मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन चुनावों को अपने लिए जनमत संग्रह करार दिया है। फ्रांसीसी मीडिया में खबर आई है कि सुरक्षा एजेंसियों ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर हमले की साजिश रचने के संदेह में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इराक में 200 से ज्यादा सामूहिक कब्रें मिली हैं। ये कब्रें उन इलाकों में मिली हैं जहां पर एक समय चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट समूह का नियंत्रण था। यूरोपीय संघ ने वेनेजुएला पर लगाए गए प्रतिबंधों को एक और साल के लिए बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। कैमरून में 85 साल के पॉल बिया ने सातवीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। सारिका सिंह को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए और बाकी खबरों के लिए bbchindi.com के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।